like running away.
मन को शांति कैसे मिलेगी?
Being a professional, stress has become part of my life.
Busy रहते हुए क्या easy रहना संभव है?
What is spirituality?
Let's explore.
Let us explore.
Face to face with Brahma Kumaris.
Namaskar. फेस टू फेस विद ब्रह्मा कुमारीज में हम सब आपके सामने हाजिर हैं एक नए डिस्कशन को लेकर. धर्म एक ऐसी धुरी जिस पर पूरा जीवन टिका हुआ होता है. बचपन से लेकर अंत तक धर्म में हम ढूंढते हैं कुछ ऐसे आंसर्स जो जिंदगी को एक बहुत ही संयम प्रदान कर देते हैं. हमारे बीच में आज है सिस्टर उर्मिल, जिनसे हम बात करेंगे कि ब्रह्मा कुमारीज का रिलीजियस सर्विस विंग किस तरह से लोगों की सेवा करता है.
हेलो दीदी, वेलकम टू द शो.
हेलो शांति
दीदी, हम सब है तो परमात्मा के बच्चे, तो हमारे बीच में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं?
एक्चुअली ये भेदभाव सब हमने ही बनाए हैं. आप देखें, जब एक बच्चा पैदा होता है मानवग्रह, उसके लिए खून की जरूरत पड़ती है, तो कभी भी हम ब्लड बैंक में जाकर ये नहीं कहते कि हमें एक बॉटल खून जो है हिंदू का दे दो, एक बॉटल खून हमें मुस्लिम का दे दो.
रिलीजन के आधार पे नहीं मांगते.
पर जब हम लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो ही ये सारे झगड़े पैदा होते हैं.
दीदी, व्हाट इज दिस बॉडी कॉन्शियसनेस?
बॉडी कॉन्शियसनेस से हमारा मतलब है कि जब हम धर्म को, जाति को, अपने आप को देश के साथ एसोसिएट करने लगते हैं, तो हमारे मन में एक भाव पैदा होने लगता है कि हम इस जाति से और इस देश से हैं, इस धर्म से हैं. और जब कई बार कोई बात होती है, कहीं ना कहीं मनमुटाव पैदा हो जाता है, तो हम अपने आप को उसके साथ एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे मन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले जाते हैं. जैसे मानो मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज कराती हूँ. कोई भी जब बच्चा आता है दुनिया के अंदर, आप देखेंगे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट लेकर के मन में नहीं आता है. अब थोड़ी देर के लिए अपने आप को इमेजिन करो कि आप एक नर्सिंग होम में हैं.
ओके
अच्छा, अब आप ये देखिए कि वहां पर चार बच्चे पैदा हो गए हैं.
राइट,
बहुत छोटे छोटे नाने मुने बच्चे हैं,
क्यूट से बच्चे हैं, देखिएगा.
गुड. अब आप मुझे ये बताओ कि इन चार बच्चों में कौन सा बच्चा हिंदू का है, कौन सा बच्चा मुस्लिम का है?
दीदी आप कमाल कर रहे हो, बच्चों को देख के क्या पता चलेगा.
उसका मतलब हमारा कहने का ये है कि डिफरेंसेस हम लोग यहाँ जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, हम कॉन्शियसनेस में आते चले जाते हैं बॉडी की, तभी हमारे ये सारे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं. तो ये जितने भी डिफरेंसेस हैं ना, दे आर ऑल क्रिएटेड बाय अस.
कैसे?
क्योंकि जब हम ये भूल जाते हैं ओरिजिनली कि हम किसके बच्चे हैं. जैसे हम देखते हैं कि एक फादर के यदि चार बच्चे हैं, हर एक कोई निश्चय होता है कि मेरे माता पिता हैं, किसी को भी इस बात के ऊपर डाउट नहीं होता है. इसी प्रकार से यदि आज हम सबको ये निश्चय हो जाए कि हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम लोग आपस में एक हो सकते हैं. अब कहीं ना कहीं आप देखिए, छोटी छोटी बात पर अगर हम कहें कि हम कहते हैं परमात्मा के बच्चे हैं, एक ही हम सबका पिता है, पर प्रैक्टिकल आउटलुक तो इसका है ही नहीं. छोटी छोटी बातों को लेकर के, धर्म की बात को लेकर हम कई बार इतने झगड़े क्रिएट कर देते हैं आपस में. हम लोग कई बार इतने इश्यूज बना लेते हैं अंदर में, अगर बाहर नहीं शो करते तो अंदर में इतना इशू रहता है, इतने कॉन्शियस रहते हैं कि हम इस धर्म को बिलोंग करते हैं, हमारा धर्म ऊंचा है, तुम्हारा धर्म नीचा है, तो कहीं ना कहीं हमारे में ये सब बातें तो है ही है.
और दीदी, क्या इसी को हम जो एक रिलीजियस कट्टरता जो आजकल हमें देखने में मिल रही है कि हम रिलीजन को फॉलो तो करते हैं बट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, सो उसको हम उसमें पॉइंट ऑफ व्यू कुछ चेंज कर सकते हैं?
ये सब पॉसिबल है, पर ये तभी पॉसिबल है कि जब परमात्मा स्वयं हमें गाइडलाइंस दे. क्योंकि जितने भी धर्म है हम देखते हैं उनके साथ धर्म गुरु जुड़े हुए हैं. जैसे क्रिश्चियनिटी है, उसके साथ हम देखते हैं क्राइस्ट जुड़े हुए हैं, गुरु नानक देव जी हैं, सिखिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सब धर्म आत्माएं हैं. लेकिन परमात्मा एक है, और परमात्मा के स्वयं के ये महावाक्य है कि बच्चे जब इस सृष्टि पर अधर्म पड़ जाता है तो सत्व धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे इस सृष्टि पर आना पड़ता है. इवन आप मुस्लिम्स में भी देखिए, आदम और हव्वा की बात आती है, उसमें कहा जाता है कि जब हम सब कब्र दाखिल हो जाते हैं तो आकर के परमात्मा खुदा हमें कब्र से निकालता है. तो खुदा शब्द ही बात को इंडिकेट करता है, दिखाता है कि परमात्मा इस सृष्टि पर खुद आते हैं.
खुद आ, खुदा का मतलब खुद आ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं।
हाँ, और इवन आप हिंदुइज्म में भी देखिए ना, उसके लिए कहते हैं स्वयं भू, माना स्वयं भूमि पर आओ,
स्वयं भू, स्वयं भूमि पर आओ।
लेकिन हमने उसका रूपांतरण शंभू शंभू कर दिया ना, तो इसलिए हम लोग उस चीज को भूल जाते हैं।
समझा ही नहीं, आज तक सोचा ही नहीं कभी।
इसी तरह से आप देखेंगे शिव पुराण के अंदर भी ये बात कही जाती है, उसमें भी कहा है कि सृष्टि के आरंभ में शिव ज्योति एक प्रकट हुई थी, जिसने सृष्टि को एक नई दिशा दी थी। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें हम लोग देखते हैं जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हैं, और ये बात सिद्ध करती है कि सृष्टि पर जब घोर अंधकार हो जाता है, हम लोग जब सब इधर उधर भटक रहे होते हैं, एंड आई थिंक यू विल एग्री विद मी एट दिस वेरी पॉइंट कि कहीं ना कहीं अंदर से हम लोग सभी अपने आप को परेशान महसूस करते हैं, अंदर से महसूस करते हैं कि मेरे पास जो शांति होनी चाहिए
वो नहीं है, और दीदी कई बार तो बहुत उदासी भी फील होती है, एंड वी डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स आल्सो,
क्योंकि अब हम लोग जो हमारे माता पिता ने हमें सिखाया वो तो हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए धर्म को भी मान रहे हैं, पूजा पाठ भी हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं जो हमें सिखाया गया है, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी एंड रिजल्ट अगर हमारे सामने नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो कमी है ना, तो उसको हमें अब सोचने की जरूरत है। और ये चीज के बारे में हमें परमात्मा पिता ही डायरेक्शन दे सकता है, इसलिए परमात्मा पिता का निर्देश है कि बच्चे भी सृष्टि के अंत का समय है, और ऐसे समय पर जब मैं आता हूँ तो मेरी तुम बच्चों के प्रति एक ये राय है कि अगर आप अपने जीवन के अंदर सुख और शांति चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये जो पांच विकार हैं, जिसको कहते हैं ना कि काम क्रोध मद लोभ की जब तक घट में आन, पंडित हो या मूर्ख दोनों एक समान, तो ये पांच विकार ही हैं जो आज हमको परेशान कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इनका रूप परिवर्तन कर दें, तो हम समझते हैं कि हम जीवन को बहुत कंफर्टेबल बना सकते हैं।
दीदी जो वाइसेस हैं, पांच विकार आपने बात करी, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो टू बी ऑनेस्ट इसके बिना काम तो चल नहीं सकता ना।
आपका कहना तो ये ठीक लगता है, लेकिन देखने में ऐसा आता है कि ऐसी बात है नहीं। दुनिया में भी आपको बहुत लोग ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो कभी गुस्सा नहीं करते, जिनके अंदर में एक बहुत ज्यादा लालच नहीं है, ये सिर्फ एक हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया है, क्योंकि जिस एनवायरमेंट में हम बड़े होते हैं वहीं से हम लोग अपनी बहुत सी आदतों को एक्वायर करते हैं। पर यदि हम थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देते हैं और हमें कोई राइट पाथ को दिखाने वाला होता है, एक्चुअली दुनिया के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं जिनके हम संग में रहते हैं, वो या तो धर्म आत्माएं हैं या महान आत्माएं हैं या श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन इन सब आत्माओं का और इन जनरल की जो आत्माएं हैं, उन सबका जो पिता है वो एक निराकार परमात्मा है। तो जब परमात्मा जो सुप्रीम पावर है वो इस सृष्टि पर आता है और हमें समझ देता है, तो हमें समझ में आता है कि ये नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, ये हमारे साथ हमेशा नहीं रहे हैं। नहीं तो आप ही बताइए ना कि जब देवियों के नवरात्रे आते हैं तो हम क्यों पवित्रता का पालन करने लगते हैं, कभी भी हम लोग व्रत रखते हैं, मंदिर में जाते हैं, खास पूजा पर जाते हैं, तीर्थ पर जाते हैं, तो भी आप देखिए कि हम लोग इस बात की प्रतिज्ञा लेते हैं भाई हम गुस्सा नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, ईश्वर की याद में रहेंगे। तो ये सब बातें दर्शाती तो नहीं कि ये सब चीजें नेचुरल नहीं है।
नॉर्म तो फॉलो करना पॉसिबल है, पर पूरी लाइफ में थोड़ा सा
जब 9 दिन फॉलो कर सकते हैं तो पूरा भी जो नहीं कर सकते, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ये अगेन हमारा एक बिलीव सिस्टम है, नहीं कर सकते, ये पॉसिबल है जब हमें कोई गाइड करने वाला हमें स्ट्रांग मिल जाए। तो इसलिए मैं आपको यही एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ कि जिस परमात्मा को हम सारी जिंदगी याद करते आए हैं, उसने जब ये बहुत क्लियर शब्दों में कहा है कि जब इस दुनिया में डार्कनेस हो जाती है, माना हम लोग इधर उधर भटक रहे होते हैं, सब कुछ करने के बाद भी शांति नहीं मिलती है, तो मैं आता हूँ और तुम्हें समझ देता हूँ कि तुम कौन हो। क्योंकि जब हम अपने आप को बॉडी से एसोसिएट कर लेते हैं ना, तो ये सारे विकार वाइसेस हमारे साथ शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही हम लोग अपने आप को उससे विड्रॉ करते हैं कि मैं शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन शांत होना शुरू हो जाता है, कर्मेंद्रियां हमारी शांत होनी शुरू हो जाती है। तभी तो ये कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें अंडरस्टैंडिंग देती है, हमें समझ देती है, और धर्म जो है ना वो हमें मान्यता देता है। और आज हम लोग मान्यताओं के आधार पर जी रहे हैं, कसूर किसी का भी नहीं है क्योंकि हमें अभी तक राइट गाइडेंस ही नहीं मिली।
राइट गाइडेंस इवन तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, वी होप कि हम उसको ठीक से फॉलो कर पाए।
इन्हीं सब बातों को उजागर करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज की एक सर्विस विंग है जिसको हम लोग रिलीजियस सर्विस विंग कहते हैं, और इसके अंतर्गत सभी धर्मों के लोग भी आते हैं। और ब्रह्मा कुमारीज ने हमारी जो बहन है उनको बताती है, आइए थोड़ा उनको सुनते हैं।
उन सबने एक ही शिक्षा हम सबको दी है कि तुम सब उस एक ईश्वर की संतान हो, एक परमात्मा की संतान हो और आपस में भाई और बहन हो।
जितना वरदानों का भंडारा भरपूर करना हो, आज की शाम तो हम ये शब्द कहने के बगैर रह नहीं सकती। वरदान लेने के लिए पहले हमको पात्र बनना पड़ेगा।
हम एक दो के सहयोगी बन, कुछ भी हो लेकिन मैं परमात्मा के याद में अपने जीवन को सुखी शांत और स्नेहमय बनाऊंगा और औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना से अपने आप ही उनको सहयोग दूंगा।
आप सब अच्छी तरह जानकार हैं कि ये पुस्तिका हमें इस संसार में नहीं, हमारे परम पूजनीय संतों के पास, महंतों के पास और इस राष्ट्र के रहनुमाओं के पास, जो अपने अपने क्षेत्र में विशाल समूह को दिशा निर्देश दे रहे हैं, उनके पास। और अगर शॉर्ट में कहूं, एक शब्द के अंदर आध्यात्म के पास मिलेगी।
बहुत रौनक है उनके चेहरों पे।
जब हम अंदर से अपनी पवित्रता को बढ़ाते हैं, अंदर से हम एक ये भाव लेकर के आते हैं कि हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे की रौनक बढ़नी शुरू हो जाती है।
कौन सी चक्की का आटा खाते
हैं? परमात्मा की चक्की का हम लोग खाते हैं, मानो वो ही हमें जो ज्ञान देता है उसको हम लेते हैं और दूसरों को सुनाते हैं।
एक क्विक क्वेश्चन, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि जिस टाइम जो आपकी संस्था है उसकी स्थापना हुई, तो उस टाइम तो बहुत ही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो लेडीज को इकट्ठा करने में और एक नया पॉइंट ऑफ व्यू लाने में कोई दिक्कत नहीं हुई?
कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट होती है, इवन यदि एक व्यक्ति भी अपनी लाइफ में राइज करना चाहता है तो बातें तो बहुत सामने आती हैं, लेकिन यदि परमात्मा का हाथ और साथ साथ में होता और एक आप सच्चाई के लिए कोई काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाते हैं। जब इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और हम लोग स्पेशलिस्ट में रिलीजियस सर्विस विंग हमने बनाया था, तो उस समय हमारे सामने काफी दिक्कतें थी, लेकिन हमारी बहनों ने बहुत मेहनत की, मैं आपको बता नहीं सकती। वो खुद जाती थी महात्माओं के पास और बड़े प्यार से उनके पास बैठती थी, हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनको कहती थी, आइए महात्मा जी, आइए स्वामी जी, आप इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, आप चलिए, आप हमारे माउंट आबू चलेंगे, हमारी दादियां आपसे मिलकर के बहुत खुश होंगी। और फिर इतना रिक्वेस्ट करने के बाद जब वो लोग वहां पर आते थे, देखते थे कि दादियां बड़े सिंपल तरीके से बैठी हैं, जैसे हम अपनी आम चेयर पर बैठे हैं, क्योंकि महात्माओं में सीट की थोड़ी सी बात होती है। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, तो वो लोग भी बड़े इस बात पर हैरान होते थे कि आप किस तरह के लोगों के साथ मिलकर के चलते हैं। और उनके अंदर भी बहनों के प्रति धीरे धीरे अधिकार बढ़ता चला गया। इवन वेद व्यासानंद जी ने इस कार्य को बहुत अप्रिशिएट किया। जब उनका पहली बार आना हुआ था तो उन्होंने कहा कि ऐसी संस्था मैंने नहीं देखी जहां पर भाई और बहनें इकट्ठे रहते और उनके जीवन के अंदर इतनी प्योरिटी है। अभी तो हर धर्म के लोग आते हैं और वो समझते हैं कि एक ऐसी जगह है जहां से हम कुछ सीख सकते हैं, और ब्रह्मा कुमारी सब धीरे धीरे आध्यात्मिकता का एक गढ़ बनता चला जा रहा है। और उसी विषय में आप सुने थोड़े से सभी धर्म के लोगों का क्या कहना है।
राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सभी योग किसके लिए? आत्मचिंतन के लिए उपाय होता है।
हम बहुत बार दूसरों से प्रश्न करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में इतना अवकाश नहीं होता है कि हम अपने आप अपने से प्रश्न कर सकें। और अध्यात्म प्रारंभ होता है उस दिन जिस दिन आपका मन एकांत में बैठकर आपसे एक प्रश्न उठाता है, तो हम मैं कौन हूँ।
धरती को स्वर्गमय बनाने के लिए जरूरी है सकारात्मक सोच की। इस सकारात्मक सोच की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम ब्रह्मा कुमारीज कर रहे हैं।
आज इस बात की सभी जरूरत है कि दुनिया के तमाम इंसान एक तरफ अपने खुदा को पहचाने, दूसरी तरफ आपस में भाई भाई बने।
आदि सनातन धर्म की एक प्रवृत्ति है, वो मुझे इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी लोगों में दिखी, खासकर मुख्य रूप से दादी जानकी जी का और दादी गुलजार जी का जो स्वरूप है, मुख्य रूप से चैतन्य आत्मा का जो शिव स्वरूप, जो आनंद है, जो सुख है, वो आप दोनों के लिए साक्षात दिखाई देता है।
आध्यात्मिकता की बात करें तो कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को नहीं मानते। उनका कहना होता है कि अपने को समझो, अपने को समझने से सब समझ में आ जाएगा। तो आपका इस बारे में क्या मानना है?
अपने को समझना माना मैं एग्जिस्ट करता हूँ। पहली बात तो यही है कि हम इसी बात को भूल जाते हैं कि मैं हूँ कौन। हम डे टू डे लाइफ के अंदर दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैं और मेरा। हम कहते हैं मेरा शरीर है, जैसे आपका नाम, ये आपका नाम है। तो फिर भी प्रश्न पैदा होता है कि आप हैं कौन। तो इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है जिसको हम आत्मा कहते हैं। और जब आत्मा एग्जिस्ट करती है तो आत्मा का पिता परमात्मा तो होगा ही। जैसे शरीर का पिता शारीरिक पिता है, इसी तरह से आत्मा का पिता परमात्मा है। वैसे भी मुझे एक हंसी की बात याद आ गई कि एक बार एक साइंटिस्ट को इस बात के ऊपर कहा गया, क्योंकि साइंटिस्ट जनरली ये माना जाता है कि भगवान में विश्वास नहीं करते, तो उसे कहा गया कि आप ये बात सिद्ध करके बताओ कि सृष्टि पर भगवान नहीं है। और जब वो इस बात को सिद्ध कर चुके तो उन्होंने अंत में कहा दैट आई थैंक गॉड दैट आई एम एबल टू प्रूव। तो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं, क्योंकि हम हैं तो उसी के बच्चे ना, और हम उसी को याद करते हैं। वैसे भी आप देखो डे टू डे लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है, टॉप टू बॉटम कोई किसी भी लेवल का व्यक्ति है, चाहे वो राजा है, चाहे महाराजा है या धर्मात्मा, हम सबका हाथ कहाँ जाता है? ऊपर नहीं जाता। तो इसका मतलब परमात्मा है, तभी हम एग्जिस्ट करते हैं।
दीदी, जैसा कि अभी आपने कहा कि योर्स इज अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस नहीं है, तो फिर आप ये त्योहार सब क्यों मनाते हैं?
हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं। हम ये चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत सभी तरह के लोगों को लाएं। लेकिन अब उनको लाएं कैसे? तो उनको लाने के लिए अगर हम उनकी बात को ही लेकर के उनको समझाते हैं तो वो बात को अच्छी तरह से समझ आते हैं। वैसे भी एक कहावत है, कहा जाता है कि डू एज रोमन्स डू। अगर एक बच्चे को माँ को कुछ खिलाना होता और बच्चा नहीं खाता तो कोई ना कोई उसके लिए तरीका जरूर अपनाती है। तो इसी तरह से जब लोग आते हैं, हम लोग जरूर मनाते हैं त्योहारों को, लेकिन हम साथ साथ उसका सिग्निफिकेंस बताते हैं। जैसे मानो हम रक्षाबंधन है उसको मनाते हैं, मानो हम लोग जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं, तो हम ये बताते हैं कि जन्माष्टमी माना जैसे श्री कृष्ण, हमें उनके समान बनना है। आप ही ये स्वयं ऐसे थे जब आपके अंदर बहुत शक्तियां और गुण आ जाते हैं। इसी तरह से रक्षाबंधन माना एक सिंबॉलिक है कि हमें अपने आप को एक बंधन के अंदर बांधना है। जब हमारे मन के अंदर प्योर वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं तो हम लोग संसार के अंदर हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए सभी धर्मों को एक साथ करने के लिए हम एक मंच पर बुलाते भी हैं और सभी प्रकार के लोगों को हमें संदेश भी देते हैं। इसके लिए हम लोगों ने कई डिफरेंट तरीके के एग्जीबिशंस भी बनाए हुए हैं, पदयात्राएं भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, गांव-गांव में भी हम लोग जाते हैं, उनको सारा जो आध्यात्मिक पहलू है जो भी आप दुनिया में कर रहे हैं उनका जब बताते हैं तो लोगों को ये बातें हमारी बहुत अच्छी लगती हैं और वो इतने करीब से जुड़ने शुरू हो जाते हैं कि हम आपको क्या बताएं।
और जो ये जो जुड़ने की प्रोसेस है, इसमें क्या योग या जिसको मेडिटेशन कहते हैं उसका भी कोई योगदान है?
मैं समझती हूँ कि बाइंडिंग एजेंट होना तो बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को बांधने के लिए बाइंडिंग एजेंट तो होता ही है। इसी प्रकार से अगर हम कोई रिवॉल्यूशनरी काम करना चाहते हैं, कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें हम सबको एक करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने अंदर ताकत होनी बहुत जरूरी है। और वो ताकत हमारे अंदर में जो आती है वो आध्यात्मिकता से आती है और साथ साथ मेडिटेशन से आती है।
तो अगर हमें चेक करना हो, हमारे दर्शकों को चेक करना हो कि उनमें योग की पावर कितनी है, कैसे चेक करेंगे?
हर एक चीज के रिजल्ट्स तो होते ही हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी होते हैं। हम लोग जब मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो दो चार दिन में ही आप देखेंगे कि आपके अंदर काफी परिवर्तन महसूस होने लगता है। हमारा जो देखने का दृष्टिकोण है वो बेहद कम होने लगता है, जिससे हमारे अंदर में बहुत रिसेप्टिविटी आनी शुरू हो जाती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, एक बार मेरे पास एक हॉस्टलर आई और वो मुझे बताने लगी कि मैं किसी बाहर की सिटी से हूँ और मैं यहाँ पर आई हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट करने में, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मेरी फ्रेंड मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ। तो मैंने उसको बोला कि आप ये नहीं देखिए कि वो मुस्लिम है और आप हिंदू हैं, आप ये देखिए कि हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। वो खुदा कहती है उसको और मैं उसको परमात्मा या भगवान कहती हूँ। लेकिन जैसे एक माँ बाप के बच्चे एक होते हैं और उनका पिता एक होता है, तो इसी तरह से आत्मा का पिता परमात्मा है। तो आप उसको एक आत्मा के रूप में देखिए और अपने को भी एक आत्मा के रूप में देखिए और ये समझिए कि हम एक उसके बच्चे हैं। तो उसका आप बिलीव करेंगे, थोड़े दिन के अंदर ही आउटलुक चेंज हो गया। और वो इतनी खुशी से मेरे पास आई, जबकि वो ये कह रही थी कि मैं तो यहाँ हॉस्टल छोड़ के अपने घर जाना चाहती हूँ।
तो हम भी कुछ ऐसा अपने में एक्सपीरियंस कर सकते हैं?
हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा साइलेंस में बैठते हैं, क्योंकि जब हम भीतर में जाते हैं तो हमें हमारे अंदर में जो क्वालिटीज हैं, जो विशेषताएं हैं, उनका एहसास होता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे सभी दर्शक और साथ साथ हर एक धर्म को तो मानता ही है, और यदि किसी धर्म को ना भी अगर आप मानते हो तो भी आप ये तो मानते ही हैं कि हम एक एनर्जी है, एक आत्मा है और उस आत्मा का जो पिता है वो भी परमात्मा सुप्रीम पावर है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए उसकी याद में बैठेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं, शरीर को हल्का करने के लिए तीन लंबे सांस ले लें। अभी अपना ध्यान आंखों के पीछे, मस्तिष्क के मध्य, प्रकृति के बीच एकाग्र करें। और एक विचार दें, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। ये भी ज्योति स्वरूप आत्मा है। मैं शांत स्वरूप हूं, ये भी शांत स्वरूप है। हम सब उठे। लौट आए वापस। जो भी आपको फीलिंग हुई उसका एहसास करें। कैसा लगा आपको?
हम सब एक परमात्मा के बच्चे, आप भी प्योर, मैं भी प्योर। नाउ आई नो योग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। रिलीजन से जुड़े जो भी हमारे भाई बहन होंगे उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा।
थैंक यू सो मच दीदी।
हमने जाना कि स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता को अगर रिलीजन के साथ भी जोड़ दिया जाए तो जिंदगी का निखार और भी ज्यादा हो सकता है। हमने एक मेडिटेशन के जरिए अपनी योग पावर को भी बढ़ाने का प्रयास किया, और इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं एंड यू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, आप हमें लिख सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसको अपनी सीरीज में शामिल करें।
हमारा पता है पीस पैलेस, D2059A, पालम विहार, गुड़गांव 122017। फोन नंबर्स 0888223738, 9818002531, 0124407 1715 ईमेल facetoface.bk@gmail.com।
हमने जाना विश्व एक परिवार है, आत्मिक भाव से एक दूसरे को देखने से एकता और भाईचारा बढ़ता है। चाहे हम किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, हमारा पिता एक है जो ज्योति स्वरूप है। महान आत्माओं की पहचान नम्रता से होती है, अभिमान से नहीं।
अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जरा सोचिए, इतनी समझ हमें परमात्मा के सिवाय और कौन दे सकता है।